آج جو سبجیکٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے ماس کمیونیکیشن یعنی کہ جن سنچار, اور ہم بات کریں گے اپنے ایک اہم ٹاپک پہ مدرت مادھیم ایک پریچے. وستر جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر اندرجیت سنگھ. سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ.
دھنیواد. سبھی شکشارتھیوں آپ کا اس کاریہ میں ہاردک سواگت ہے. آج ہم پانچویں پاٹھ پر ہیں جس کا نام مدرت مادھیم ایک پریچے. تو اس وشے پر ہم لوگ بات کرنا پرارمبھ کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ دھیان میں لاتے ہیں کہ کس پرکار سے سماچار پتر ساپتاہی کی پترکائیں ماسک مدرت مادھیم کے وبھن پرکار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ بچپن سے وبھن پرکار کے مدرت مادھیموں کے ساتھ پڑھتے لکھتے آئے ہیں اور انہیں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. راشٹریہ مکت ودیالیہ شکشا سنستھان کا پریاس یہ رہتا ہے کہ آپ کا جو بھی سیلف لرننگ مٹیریل ہے, جو بھی آپ کی سوا ادھیئن سامگری ہے جو کہ خود بخود مدرت مادھیم میں آپ کے پاس میں ہے, اس کو وستار سے آپ کے سمجھ پرستت کیا جائے. اور اس وستار کو دینے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے سمجھ اپستھت ہوتے ہیں مکت ودیا واڑی کے مادھیم سے. تو مکت ودیا واڑی کے مادھیم کے سے ساتھ جب آپ یہ کاریہ سنتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سوادھیئن سامگری کی چرچا کر پاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے من میں جو بھی پرشن آتا ہے ان کا بھی ہم اتر دینے کا ان کاریہ میں پریاس کرتے ہیں. تو شکشارتھیوں شروتاؤں, آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس کاریہ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کس پرکار سے مدرت مادھیم ہمارے دینک جیون میں ایک پربھاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو استھاپت کیے ہوئے ہیں. جب بھی ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں تو سماچار پتر کے ساتھ اپنا دن پرارمبھ کرتے ہیں, ودیالیہ جاتے ہیں وہاں بھی مدرت مادھیم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, منورنجن کے لیے ہم لوگ پترکائیں پڑھتے ہیں تب بھی مدرت مادھیم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس پرکار سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو جیون پریانتر مدرت مادھیم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اسی مدرت مادھیم کو آگے بڑھانے کا کاریہ آپ کی بولی باڑی بھاشا وچار جو ہے وہ سب سارتھک روپ سے کام میں آتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ اس کاریہ کے مادھیم سے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک اچھا لیکھک بننا ہے, ایک اچھا سنچارک بننا ہے, ایک اچھا کمیونیکیٹر بننا ہے, تو آپ کو کم سے کم ایک بھاشا پر اچھی پکڑ ہونی چاہیے, اس کی ورتنی آپ کو آنی چاہیے, اس کی ویاکرن آپ کو آنی چاہیے, اس کا شبد کوش آپ کو آنا چاہیے, واقع سنرچنا آنی چاہیے, بھاووں کو وچاروں کو پرکٹ کرنے کے لیے شبد سنرچنا کے ساتھ اچھے واقع بنانے آپ کو آنے چاہیے. تو پیارے شکشارتھیوں, اس کاریہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انہیں سب وچاروں کے ساتھ میں, اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ کس پرکار آج ہم مدرت مادھیم کے وبھن روپوں کی پہچان کریں گے. اس کاریہ کے دوران مدرن کے اتہاس کے بارے میں چرچا کریں گے, ساتھ ہی ساتھ سماچار پتروں کے ادبھو کے بارے میں جانیں گے, اور وشیش طور سے مدرت تتھا الیکٹرانک مادھیموں میں ہم انتر کرنا بھی اس کاریہ کے دوران آج سمجھنے کا پریاس کریں گے. اس دوران آپ کے من میں نشچت روپ سے اگر کوئی بھی پرشن آتا ہے پیارے شکشارتھیوں, تو آپ کو ہمارے اسٹوڈیو کے فون نمبر پر فون کرنا چاہیے, اور آپ کے فون کالز کا ہم کو انتظار بھی رہتا ہے. اس کے دو کارن ہیں, ایک تو پہلا کارن ہے کہ اگر آپ کے من میں کوئی شنکا ہے تو اس کا ہم نیوارن کر سکتے ہیں, دوسرا کارن یہ ہے کہ جب آپ ہم سے جڑتے ہیں تو نشچت روپ سے ہم کو بھی ایک بل ملتا ہے کہ ہمارے پیارے شکشارتھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پٹھن پاٹھن میں ان کی ایک نشچت روپ سے بھومکا ہے. اور آپ کو ایک بات میں اور بولنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے اس بھینکر کال میں ویشوک استر پر دورست شکشا مادھیم کو شکشا کی ایک نوین پرالی کے روپ میں اپنا لیا گیا ہے, جس کے لیے آپ پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ساکشی تھے اور سہبھاگی تھے. تو نشچت روپ سے آپ کو راشٹریہ مکت ودیالیہ شکشا سنستھان کے ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے بڑا گرو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کس پرکار سے دورست شکشا مادھیم کو چین کیا ہے اور انہیں اس کے ساتھ ادھیئن کر رہے ہیں. تو ہم لوگ آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج ہم لوگ مدرت مادھیموں کی چرچا کریں گے, تو ہم لوگ جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ سماچار پتر کیا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کا جو صبح ہے, آپ کی جو مارننگ ہے, آپ کا جو سپربھات ہے, جو آپ کا دن کا پرارمبھ ہے, وہ سماچار پتروں سے ہوتا ہے, جو کہ ایک مدرت مادھیم ہے جس کا سیدھا سیدھا سمبندھ ہے کہ سماچار سنواد اور لیکھ جن کا کہ سنکلن سماچار پتروں میں ہوتا ہے, جن کے کی سمپادن کو جن کو کی سمپادن کے دوارا مدت روپ سے آپ کے سمجھ پرستت کیا جاتا ہے. کئی کئی بار یہ سماچار پتر سائنکال کو بھی پرکاشت ہوتے ہیں, جن کو ہم لوگ ساندھ دینک بھی کہتے ہیں. ساندھ دینک مکھیتیہ اس وچار کے ساتھ پرستت کیے جاتے ہیں کہ آپ کو پورے دن بھر کی جو دن چریا ہے ان کا سارانش آپ کو مل جائے, اور ساتھ ہی ساتھ پورے دن میں گھٹی ہوئی بڑی گھٹناؤں کی بھی جانکاری آپ کو مل جائے. تو یہ تو ہو گئی بات سماچاروں کی. اب آپ دیکھیے کہ کیسے بھی کبھی بھی آپ نے کوئی درگھٹنا دیکھی ہوگی, کوئی گھٹنا دیکھی ہوگی, اس کا وورن آپ کو سماچار پتروں کے مادھیم سے प्राप्त होता है और आप देख रहे होंगे कि उस विवरण में इतनी ज्यादा गहराई होती है कि आपको उस समाचार से संबंधित सभी जानकारियां समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। तो इन सब बातों का जिक्र यहाँ पे करना इसलिए भी आवश्यक है कि हम लोग यह जान लें कि समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए किस प्रकार से सूचना को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कई कई बार हम उनके द्वारा मनोरंजित भी होते हैं और कई कई बार ऐसा होता है कि ये समाचार पत्र शिक्षा के कार्यक्रमों को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आपने समाचार पत्रों में बहुत सारे स्तंभ भी देखे होंगे जो कि मनोरंजक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं। कई बार आपने उसमें चुटकुले भी पढ़े होंगे, जोक्स भी पढ़े होंगे और साथ ही साथ संपादकीय के जो विचार हैं उनके द्वारा आपने यह जाना होगा कि समाचारों के द्वारा समाज में एक अलख जलाने का प्रयास किया जाता है जिसके कि हम समाज को उद्वेलित कर सकें। एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि इस कोविड काल में कोई संपादक अगर अपने समाचार पत्र के माध्यम से हमसे यह अनुरोध करता है कि आप दिन भर मास्क लगा कर रहें, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, लोगों से दूरी बना कर के रखें, तो इसका मतलब है कि हम सूचना के साथ साथ समाज के हित का कार्य भी समाचार पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से प्यारे शिक्षार्थियों हम यह कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का प्रयोग हम समाचारों के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं और सूचना के लिए करते हैं। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो यह तीन बिंदु जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे कि जो पूरा मास मीडिया है उसका आधार कहाँ पर है, तो उसका आधार है, मास मीडिया का आधार न्यूज़ के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है और इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो यह तीन शब्द आपको याद कर लेने चाहिए। आप आगामी कक्षाओं में जब जाएंगे BGMC MMC में या PhD में तो यह तीन शब्द जीवन पर्यंत आपके साथ ही रहने वाले हैं मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में। अब हम लोग बात करते हैं कि जब समाचार पत्र छपने लगे, इनका वैश्विक स्तर पे इतना प्रचार प्रसार हो गया, पूरे यूरोप में बहुत सारे समाचार छपे, भारत में नवजीवन और हरिजन के माध्यम से हमने स्वतंत्रता आंदोलन भी जीत लिया, तो क्या समाचार पत्रों का इतना प्रभाव है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एक निश्चित रूप से भूमिका रही कि हम लोग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के सभी जनमानस को एक साथ लेकर के आए और गांधी जी के नेतृत्व में हमने अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ कर निकाला और अपने इस राष्ट्र को और महान बनाते हुए आज भारतवर्ष की अनुपम स्थापना की है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, मुद्रण के इतिहास पे जब हम आते हैं तो महाराजा भोज के समय से ही हम देखते हैं कि भारत में भोज पत्रों का किस प्रकार से विवरण मिलता है कि हम लोग संवाद के लिए भोज पत्रों पर भी लिख करके संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। बहुत सारी पांडुलिपियां भी मिली हैं, बहुत सारी गुफाओं में चित्र भी मिले हैं, संदेश भी मिले हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ताड़ के पत्रों पर प्राचीन पांडुलिपियां भी हमको प्राप्त हुई हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रण का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। और साथ ही साथ हम यह जाने कि मुद्रण की कला सबसे पहले चीनियों द्वारा लाई गई थी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चीनियों ने सबसे पहले मुद्रण की कला का आविष्कार किया था और चीनियों के द्वारा अक्षरों की सफाई के लिए लकड़ी के ठप्पे भी बनाए गए थे। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तांग वंश की, उसमें हम यह पाते हैं कि 600 ईस्वी में तांग वंश के शासन के दौरान जब लकड़ी के ठप्पे बन रहे थे, उसी दौरान 648 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथ सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जो कि ग्रंथ हैं, उनका भी मुद्रण जो है लकड़ी के ठप्पों के माध्यम से ही किया गया था। आज अगर इन ठप्पों को देखना है जो कि मुद्रण के प्राचीनतम उदाहरण हैं और इनको देखने के लिए आपको जापान की राजधानी टोक्यो के सुलेखन संग्रहालय में जाना होगा। तो प्यारे शिक्षार्थियों, कभी आपका जापान भ्रमण करने का मौका लगे तो आप निश्चित रूप से वहाँ की कैलीग्राफी जो आर्काइव है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की सुलेखन संग्रहालय में जाएंगे और निश्चित रूप से इनको देख पाएंगे। धीरे धीरे हम बात को आगे बढ़ाते हैं और यह पाते हैं कि चीन में छपी सबसे पहली किताब, जो कि बौद्ध धर्म और बौद्ध लेखन पर आधारित थी, जिसका कि नाम हीरक सूत्र है, उसको हम लोग मानते हैं कि यह सबसे पहली छपी हुई किताब है, जिसका कि प्रकाशन, जिसका कि लेखन 868 ईस्वी में वांगचिक द्वारा किया गया था। तो आप यह नाम याद रख लें, वांगचिक द्वारा 868 ईस्वी में हीरक सूत्र नाम की पुस्तक लिखी गई है। आप जब आगामी कक्षाओं में जाएंगे, नेट का एग्जाम देंगे, तो आपसे पूछा भी जाएगा कि हीरक सूत्र के लेखक कौन थे, तो आप बताएंगे कि वांगचिक इसके लेखक थे। अब इस किताब को अगर देखना हो तो इसकी कुछ प्रतियां चीन के एक संग्रहालय में संग्रहित हैं, जिनको कि आप जाकर के कभी देख सकते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों और श्रोताओं, इन कार्यक्रमों का आप लाभ उठाइए और सुनते रहिए हमारी मुक्त विद्या वाणी, क्योंकि हम ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं जिनमें हम ऐसी रोचक जानकारियां आपको देते हैं जो कि एक शिक्षार्थी होने के नाते तो आपके लिए अच्छी हैं, लाभप्रद हैं, साथ ही साथ एक अगर आप आम श्रोता भी हैं तब भी ये जानकारियां आपके जीवन में बहुत ही रोचक ढंग से आपको सार्थक रूप से जानकार बनाने में सक्षम रहेंगी। हम देखते हैं कि हमारे अखबार कागज़ के होते हैं, नोट भी कागज़ के होते हैं, कागज़ के पत्रों को भी हम भेजते रहे हैं। आज इतने आधुनिक काल में भी हम प्रिंटर के माध्यम से कागज़ों पर ही प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। बेशक हम लोग ईमेल की दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी कार्यालयों में काम भी हम लोग लिखित माध्यम से, मुद्रित माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कागज का इतिहास बहुत ही बड़ा है। और हम लोग यह देखते हैं कि एक मिस्र के निवासी ने 3500 ईसा पूर्व में कागज बना लिया था, फिर भी यह 11वीं शताब्दी तक यूरोप पहुंचा और यूरोप का पहला कागज कारखाना स्पेन में 1120 में स्थापित हुआ। आज हम सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों, लेकिन अगर हम लोग प्राचीन काल में जाते हैं तो देखते हैं कि कई कई वर्ष लग जाते थे तकनीक का आविष्कार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में। तो इसका मतलब है कि सूचना क्रांति का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत है। अब हम लोग अगर मुद्रण पर और बात आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ठप्पे के द्वारा जो छपाई 1300 ईस्वी तक यूरोप में पहुंची थी, ऐसा माना जाता है कि जर्मनी के जोहानस गुटनबर्ग, आप यह नाम याद रख लीजिए प्यारे शिक्षार्थियों, मैं फिर कह रहा हूँ कि नेट के एग्जाम में यह प्रश्न आता ही आता है। NIOS की परीक्षा पास करने के बाद जब आप कभी याद के तौर पे NIOS के सेल्फ लर्निंग मटेरियल को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारे संस्थान का ये जो मुद्रित सामग्री है ये बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है, जिसका की प्रभाव आपके लिए हमेशा रहेगा। तो मैं बता रहा था कि जर्मनी के जोहानस गुटनबर्ग ने 1439 ईस्वी के लगभग मुद्रण की तकनीक विकसित की थी। गुटनबर्ग ने छपाई के लिए तेल पर आधारित स्याही का आविष्कार भी किया था। 1450 में उन्होंने इसके द्वारा बाइबिल की छपाई भी की थी और लैटिन भाषा में छपी इस बाइबिल में 1282 पृष्ठ थे। पुस्तक के लिए उन्होंने उठने वाले ब्लॉक यानी ठप्पे का प्रयोग किया था और कालांतर में मुद्रण तकनीक 1556 में भारत में आई। और हम यह पाते हैं कि एक यहूदी पादरी के द्वारा यह मुद्रण तकनीक जब भारत में लाई गई तो गोवा में पुर्तगाली भाषा में बहुत सारा काम प्रारंभ किया गया और संत फ्रांसिस जेवियर द्वारा लिखित डॉक्ट्रिना किस्टा का मुद्रण वहां पे प्रारंभ किया गया गोवा में। और साथ ही साथ मुद्रण के आविष्कार से जब जनसंचार में क्रांति आ गई तो बहुत भारी संख्या में किताबों का मुद्रण किया जाने लगा और मानवता के इतिहास में इतना प्रभावशाली आविष्कार कोई नहीं था। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि कथित से ज़्यादा हम लोग लिखित पर विश्वास करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संदर्भ, कोई प्रसंग, कोई भी वार्ता, कोई भी संवाद अगर हमें लिखित रूप से मिलता है प्यारे शिक्षार्थियों, तो निश्चित रूप से उसका एक अन्य प्रभाव रहता है, उसका एक सर्वोच्च प्रभाव रहता है। और हमेशा एक उदाहरण के तौर पर आप मुद्रित चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हो एक संदर्भ के तौर पर, तो इसलिए इस कार्यक्रम की रोचकता और भी बढ़ जाती है। और हम अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे समाचार पत्र कब छपा और पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौर्य काल के दौरान एक जो घोषणा होती थी लोगों के बीच में, उसको प्रसारित करने के लिए कई बार मुद्रित तरीके से भी सूचनाएं दी जाती थी, लेकिन हम लोग अगर आधिकारिक रूप से ये कहें तो प्राचीन रोम में जो एक्टा डाई अर्ना या शासकीय उद्घोषणा, जिसको कि नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता था, उसको धातु या पत्थर पर लिखने का उन लोगों ने प्रयास किया था और वो सफल भी रहा था। इसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप का जो समाचार पत्र था वो धातु या पत्थर पर लिखा कर प्रसारित किया गया था। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि प्रारंभिक जो समाचार पत्र थे वो धातु या पत्थर पर लिखकर प्रसारित किए गए थे। लेकिन फिर भी हम अगर बात आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि चीन में टिपाओ शासन के दौरान ऐसे ही समाचार पत्रों को प्रकाशित किया गया था कि जो बहुत ही विस्तृत थे और जिनका कि उदाहरण कई आप कार्टूनों में भी देखते होंगे कि किस प्रकार से पत्थर की स्लेट पर अक्षरों को उकेर कर समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे। तो अब शिक्षार्थी ये मान के चलिए कि उस जमाने में कितना कठिन होता था ऐसे समाचार पत्रों को प्रकाशित करना। अब हम बात आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग आते हैं पेकिंग गजट के ऊपर में, जिसको कि हम लोग पहला अखबार भी मानते हैं, और यह देखा जाता है कि इसको 618 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और शुरुआती दौर में यह अखबार हाथ से लिखा जाता था। और देखिए हम कहाँ पत्थर की स्लेट पर अक्षरों को उकेर कर लिख रहे थे, लेकिन पेकिंग गजट में उसी काम को हम लोग हाथ के द्वारा अक्षरों को लिख के करते थे, जिसको कि आप कालांतर में कैलीग्राफी के नाम से भी जानते थे, बहुत जानते हैं। और बहुत सारे कैलीग्राफर ऐसे होते थे कि उनकी राइटिंग इतनी अच्छी होती थी कि वो लंबी नोक वाले उस पेन से अक्षरों को इस प्रकार से सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत करते थे कि न सिर्फ उनको पढ़ने में अच्छा लगता था बल्कि उस लेखन शैली को देख कर की हमको बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और ये देखते हैं कि जब अखबार हाथों से लिखे जाते थे, पाठकों के बीच में वितरित किए जाते थे और मुद्रित करके प्रसारित किए जाते थे, और विशेष तौर पे हमने पेकिंग गजट की भी बात की है, तो इन समाचार पत्रों को और आगे कालांतर में नया विकास मिला, नया दौर मिला और शासकों द्वारा प्रकाशित न्यूज लेटर समाचार पत्र के पहले रूप के में उसमें माने जाने लगे। और साथ ही साथ जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे न्यूज लेटर प्रकाशित किए तो यह माना गया कि भारत में भी अखबारों का प्रकाशन बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और समाचार पत्रों के जो वर्ल्ड एसोसिएशन के मुताबिक अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि आधुनिक अर्थों में पहला अखबार, आप ध्यान से सुनिएगा ये बात कि आधुनिक अर्थों में पहला अखबार हम लोग 1605 ईस्वी में जोहान कार्लोस के द्वारा जो कि प्रकाशित किया गया था उसको मानते हैं। तो आप फिर से ये प्रश्न सुन लें कि पहला अखबार जोहान कार्लोस के द्वारा 1605 ईस्वी में, वर्ष 1605 में निकाला गया था। अब समाचार पत्र का नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, एक मैं समाचार पत्र का नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम है रिलेशन एलर फॉर मेनन अन जेंडे कवांडिगन हिस्टोरियन। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ, रिलेशन एलर फर्नेमेन अन जेंडे कवांडिगन हिस्टोरियन। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इतने बड़े बड़े नामों के साथ भी समाचार पत्र निकलते थे। वर्ष 1609 में जर्मनी के द्वारा एक अन्य अखबार भी प्रारंभ हुआ था जिसका कि नाम फाइल था। अब एक छोटे से शब्द का नाम भी हम समाचार पत्रों का रखते हैं, उतना बड़ा लंबा नाम भी रखते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि बहुत सारी विविधताओं के साथ इन अखबारों को प्रकाशित किया गया। और आधुनिक अवधारणा के अनुसार एक अन्य अखबार है जिसको कि हम लोग द गजट के नाम से जानते हैं, उसका प्रकाशन वेनिस से हुआ था। तो यह जो हम लोग समाचार पत्रों का इतिहास यहाँ पे विवरण कर रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके एक नंबर और दो नंबर के प्रश्न इन्हीं छोटी छोटी सूचनाओं को आधार में रख करके बनाई जाती है। तो आपको निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में बहुत सहायता इनसे प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार समाचार पत्र दीर्घकाल से प्रकाशित हो रहे हैं और समाचार पत्रों ने किस प्रकार शासकों के शासनकाल में आलोचना भी प्रारंभ कर दी थी, प्रकाशक से भी बहुत से लोग खुश नहीं थे, बहुत से लोग अप्रसन्न थे और साथ ही साथ बहुत सारे समाचार पत्रों को बंद होने के लिए भी बाध्य किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अखबार द पब्लिक आकरेंसेस कुछ दिन के लिए ही छप सका था। इन सभी का कारण ये था कि जैसे हम लोग देखते हैं कि यूके में जेम्स एसर द्वारा जो प्रारंभ किया गया डेली पेपर था वो भी बहुत दिन नहीं चल पाया था। अब ये समाचार पत्र बहुत जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म हो जाते थे क्योंकि जब इन्होंने जनता की बातों को शासन के समक्ष रखना प्रारंभ किया था तो एक समाज में आंदोलन तो प्रारंभ ही हुआ, साथ ही साथ निश्चित रूप से जो शासक वर्ग थे वो भी इनसे खुश नहीं रह पाए क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों की सीधी आलोचना इन अखबारों द्वारा की जाने लगी थी। तो इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि समाचार पत्रों ने अपनी विषय वस्तु में बहुत व्यापक तौर पर परिवर्तन किए और 1622 ईस्वी में जब हम लोग देखते हैं इंग्लैंड के द वीकली न्यूज़पेपर को प्रारंभ किया गया था और साथ ही साथ 1622 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा एक आधुनिक अखबार प्रारंभ किया गया था जिसका नाम ऑक्सफोर्ड गजट था और इसी के साथ साथ लंदन का डेली कोरांट भी प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। तो इन समाचार पत्रों के आने के बाद एक नई क्रांति आई और जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला अखबार पब्लिक आकरेंटस छपने लगा और 1690 में जब ये आया तो उस समय जन आंदोलन के रूप में इसको देखा गया। अब बात जब आगे बढ़ती है पेंसिल्वेनिया इवनिंग पोस्ट अब आरंभ हुई और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी छपने लगा तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा दौर था जब समाचार पत्रों के क्षेत्र में एक क्रांति का प्रादुर्भाव हो गया। प्यारे शिक्षार्थियों, तो जो आपका ये मॉड्यूल नंबर 2 है मुद्रित माध्यम, इसको आपको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत अधिक जानकारी आपके लिए रखी गई है। यह जानकारी ना कि सिर्फ आपके लिए अनावश्यक तक ही सीमित रहेगी बल्कि जीवन पर्यंत आपके लिए लाभप्रद रहेगी। और आज आप मान के चल रहे हैं कि आज हम लोग देखते हैं कि लगभग 14 करोड़ के करीब समाचार पत्र छप रहे हैं और भारत जो है दुनिया का दूसरा तथा कई कई बार तीसरा सबसे ज़्यादा अखबार प्रकाशित करने वाला राष्ट्र बन जाता है। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष की जो विविधता है, जो भारतवर्ष की जनसंख्या है, जो भारतवर्ष के स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनके द्वारा भी समाचार पत्रों को बहुत आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त हुई है। और भारत में जब हम समाचार पत्रों के मुद्रण के बारे में बात करते हैं तो कोलकाता का जिक्र आता है जिसको कि हम लोग कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम लोग कैलकटा भी कहते हैं। इसी से सीधा सीधा इसका संबंध है क्योंकि वर्ष 1774 से 1922 तक यह भारत की राजधानी था और राजधानी होने के नाते यहीं से रेल की स्थापना हुई, यहीं से रेल प्रारंभ हुई, डाक तार भी यहीं से प्रारंभ होता है। और तो और हम लोग यह भी देखते हैं कि यह कई माने में सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र था भारतवर्ष का, जहां से हम लोग देखते हैं कि एक अंग्रेज के द्वारा भारत का पहला अखबार 29 जनवरी 1780 वर्ष में प्रारंभ किया गया था और ये महानुभाव थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट के नाम से भारत का सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, जिसको कि आज भी हम उदाहरण के तौर पर, संदर्भ के तौर पर पढ़ते हैं। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न हमको अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, अगस्त हिक्की कौन थे, 29 जनवरी 1780 में कौन से पेपर का प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से इस ऐतिहासिक जानकारी को हमको हमेशा संदर्भ के तौर पर अपने को याद रखने के लिए आवश्यकता रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी इसको हम लोग कहते थे। कई कई बार हम देखते थे कि इसमें मात्र 2 पृष्ठ थे, जिसको कि बाद में बढ़ा करके 4 तक किया गया, जिसका कि आकार 35 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर था। तो देखिए, जब भारत में समाचार पत्र प्रारंभ हुआ तो उस समय इतने ज़्यादा संसाधन नहीं रहे होंगे जिनको कालांतर में आगे बढ़ाते हुए इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना करना प्रारंभ किया भारतीय समाचार पत्रों ने, तो बहुत सारा समाचार पत्रों को 1782 ईस्वी में जब्त कर लिया गया, प्रेस को बंद करा दिया गया और हिक्की की को देश छोड़ के जाने के लिए कहा गया था। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष को समाचार पत्र दिया उसको इस देश से जाने के लिए कहा गया था, जबकि शासन भी ऐसे ही व्यक्तियों के पास था जो हिक्की के हितों की बात करते थे। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग यह जान लें कि जब हिक्की को इंग्लैंड वापस भेज दिया गया कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में, राष्ट्रीय पुस्तकालय में, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी बंगाल गजट की प्रतियों को सुरक्षित रखा गया है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वह समाचार पत्र भारत के मुद्रण इतिहास का एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। तो निश्चित रूप से आपको ये जानकारियां सब ध्यान में रखनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि 1780 ईस्वी में हिक्की के पदचिन्हों पर चलते हुए कलकत्ता में दूसरा अखबार जो निकला वो था द इंडियन गैजेट। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1784 ईस्वी में कलकत्ता गैजेट, 1785 ईस्वी में बंगाल जनरल, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र पूरे भारतवर्ष से निकलने प्रारंभ हुए जिनको कि हम लोग मद्रास कोरियर के नाम से जानते हैं, जिसका कि प्रकाशन 1785 ईस्वी में हुआ था। मद्रास गजट के नाम से जानते हैं, जिसका कि प्रकाशन 1795 में शुरू हुआ था। मुंबई हेरल्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसका कि प्रकाशन 1785 में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से भारत में प्रेस के लिए बहुत सारा कार्य किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी प्रारंभ हुए, जिसको कि राजा राम मोहन राय के संरक्षण में आगे बढ़ाया गया। और राजा राम मोहन राय ने एक फारसी भाषा के पत्र मिरात उल अखबार का संपादन करना भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके कि द्वारा हम यह देखते हैं कि भारत में वर्नाकुलर प्रेस की स्थापना भी हुई। भारत में जो विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों को एक साथ समग्र रूप से प्रकाशित करने का दायित्व दिया गया, इसका सीधा अर्थ था कि भारतवर्ष की जो भाषाई विविधता है, भारत की जो विभिन्न बोलियां विभिन्न भाषाएं हैं, उनको समग्र रूप से एक मंच पे रखते हुए भारत में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो इसमें नाम आता है कन्नड़ समाचार का, जिसको कि एक भारतीय नहीं बल्कि एक विदेशी धर्म प्रचारक ने प्रसारित करना शुरू किया था। देखिए, यही भारतवर्ष की एक सबसे अच्छी बात है प्यारे शिक्षार्थियों, कि भारतवर्ष में कई सारे काम इतने अच्छे हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से उनको हम लोगों ने स्वीकारा है, जिनको प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कोई भारतीय न होकर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। अब जैसा कि वर्णन हमारी इस सेल्फ लर्निंग मटेरियल में है, हम यह देखते हैं कि कन्नड़ समाचार का प्रकाशन करने वाला कोई भारतीय व्यक्ति नहीं बल्कि विदेशी धर्म प्रचारक था। तो इसका मतलब है कि भारतवर्ष का जो विशाल हृदय है उसमें सभी धर्मों को सम्मिलित समाहित करने की भावना है। और साथ ही साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1816 में जब बाल गंगाधर भट्टाचार्य जी के द्वारा द बंगाल गजट निकाला गया था, तब समाचार पत्रों के मुद्रण और प्रकाशन में एक नई क्रांति आई। उसके बाद मुंबई समाचार प्रकाशित होने लगा, और साथ ही साथ एशिया का जो सबसे पुराना समाचार जिसे माना जाता है मुंबई समाचार, इसको 1822 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। सोचिए कि 1822 से लेकर के कितने सालों तक इसका प्रकाशन रहा, जिसको कि एशिया का सबसे पुराना अखबार माना जाता है। तो शिक्षार्थियों, मुझे लगता है कि हम लोग इससे पहले बात आगे बढ़ाएं और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के ऊपर में आए, हम लोग थोड़ा सा एक विराम ले लेते हैं और विराम के बाद पुनः उपस्थित होते हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन भारत के समाचार पत्रों के प्रकाशन और विस्तार के लिए एक अच्छी भूमिका रखता है। शिक्षार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन का भी हमारे समाचार पत्रों के साथ, हमारे मुद्रित माध्यम के साथ संबंध है। तो हम लोग इस पर ये बात करना चाहेंगे कि जो महात्मा गांधी जब भारत लौटे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया, तो वो एक महान संपादक के तौर पे भी अपने आप को स्थापित कर पाए। उन्होंने 1918 में होम रूल पार्टी का प्रारंभ किया, जिसके द्वारा उन्होंने बाद में यंग इंडिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि नवजीवन नाम का एक अन्य गुजराती साप्ताहिक भी गांधी जी ने प्रारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने महादेव देसाई के संपादन के अंतर्गत हरिजन प्रारंभ किया। एक बार इस जानकारी को आप पुनः सुनिए, कई कई बार हम लोग मान के चलते हैं कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक गांधी जी थे, तो अगर हम अपनी सेल्फ लर्निंग मटेरियल पर ध्यान देंगे तो उस पर लिखा है कि महादेव देसाई के संपादकत्व में हरिजन प्रारंभ किया था। इसका मतलब गांधी जी हरिजन के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहते थे। और साथ ही गांधी जी ने अपने पत्रों में किसी भी प्रकार के विज्ञापनों को ना प्रकाशित करने का जो निर्णय लिया था, इसका मतलब था कि विज्ञापनों के द्वारा अखबार या तो धन अर्जन के प्रति कटिबद्ध हो जाते हैं और समाचारों को ढंग से ले नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये जानते हैं कि समाचार पत्रों की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी रही है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत में लगभग 100 के करीब समाचार पत्र इस दौरान हो गए थे। और साथ ही साथ अगर देश में कुछ ऐसे भी समाचार पत्र हैं जिनको कि हम मान के चलते हैं कि इन्होंने बहुत रूप से ख्याति प्राप्त की है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन, और साथ ही साथ अगर हम लोग मुंबई में जो अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, जो कोलकाता में प्रकाशित हो रहे हैं, या चेन्नई में प्रकाशित हो रहे हैं, दिल्ली में प्रकाशित हो रहे हैं, इनके द्वारा अगर इनका एक समग्र रूप से इनका अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि भाषाई अखबारों में मुंबई समाचार, मलयाला मनोरमा, दीपिका भी ऐसे समाचार पत्र हैं जिन्होंने विभिन्न भाषाओं के साथ भी अपनी एक छाप बनाई है, अपने लिए एक अच्छा पाठक वर्ग एकत्र किया है। लेकिन अगर इसका विकास हम और देखते हैं तो यह पाते हैं कि जब भारत में आधुनिक तकनीकी के आगमन हो गया था, उसके बाद में जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा टाइप सेटिंग होने लगी, ऑफसेट प्रिंटिंग होने लगी, लेजर प्रिंटिंग होने लगी, तब ऐसे समाचार पत्रों की मुद्रण प्रणाली को और आगे बढ़ते हुए दीर्घकालिक करते हुए प्रारंभिक दिनों में जब श्वेत शामी अखबार छपते थे, उनको अब रंगीन रूप से छापना भी संभव हो गया था। उनमें हम चित्र भी छाप पाते थे, घटनाओं का चित्रण हम वैसा ही करते थे जैसे कि घटना घटित हुई है। आपने विशेष तौर से कुछ ऐसे समाचार पत्र भी देखे होंगे प्यारे शिक्षार्थियों, जिसमें कि उस घटना की कुछ ऐसी तस्वीरें भी छाप दी जाती हैं जो स्वतः अपने उस कथन को पूर्ण करती हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अखबार में जब ऐसा कोई चित्र आप देखते हैं तो उस पूरे घटनाक्रम से आप रूबरू हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि अखबार विभिन्न आकार के होते हैं। आपने सुना भी होगा कि हम लोग मुख्य रूप से अखबारों को ब्रॉड शीट, टेबलॉइड के माध्यम से देखते हैं, और तीसरा जो प्रकार है जिसको कि हम लोग बर्लिनर या मिडीज भी कहते हैं। तो आप देखिए, तीन प्रकार के समाचार पत्र आते हैं। एक रोजाना समाचार पत्र जो आप घर पे पढ़ते हैं उसको हम लोग ब्रॉड शीट कहते हैं, और मुख्य रूप से जो सायंकाल में जो टेबलॉइड निकलते हैं, जो छोटे समाचार पत्र निकलते हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि वो लगभग ब्रॉडशीट का आधा होता है, उसको हम टेबलॉइड कहते हैं। और साथ ही साथ दूसरे उदाहरण के तौर पे हम लोग बर्लिनर और मिडीज को भी देखते हैं। तो इसका मतलब है कि विभिन्न साइज में निकलने वाले ये जो समाचार पत्र हैं, जिनका कि जिक्र हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल में दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए शिक्षार्थियों। और विशेष तौर से आज इस आधुनिक काल में इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा है। अब आपको भौतिक रूप से किसी समाचार पत्र को रोजाना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास डेटा है जो कि मोबाइल पे आज आपको मिल जाता है, 1.5 GB डेटा की बात हम सब लोग अक्सर करते रहते हैं, उन 1.5 GB डेटा का प्रयोग अगर आप ई मुद्रित समाचार पत्रों के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से आप घर बैठे कभी भी 4-5-10 अखबारों को आराम से मुफ्त में पढ़ पाएंगे सिर्फ उस 1.5 GB के माध्यम से। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनेट के द्वारा, जिस प्रकार से हमने देखा है कि समाचार पत्र आज हमारे हाथ में आ गए हैं, जिनको कि हम पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, तो जब हम इनके मुख्य इंटरनेट संस्करणों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि द हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े समाचार पत्र जो हैं, उन्होंने अपने ई एडिशन को आप तक निःशुल्क पहुंचा दिया है। आप निःशुल्क ऐसे समाचार पत्रों को पढ़ सकते हैं। आपको मैं एक रोचक बात बताना चाहूंगा, हमारे संस्थान का जो एक कार्मिक समूह है, उस कार्मिक समूह पर रोजाना हमको 4-5 समाचार पत्र हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं वो भेज देती हैं, जिनको कि हम लोग रोज पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रण माध्यम जो चीनियों द्वारा खोजा गया था, जिसको कि आगे कालांतर में विकसित करते हुए आज हम इंटरनेट पे ले आए हैं, कंप्यूटर पे ले आए हैं, अपने मोबाइल पे ले आए हैं, इसके द्वारा एक नई क्रांति आ गई है। हम कभी भी समाचार पत्रों को पढ़ने में अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। तो जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, इनको आप और ढंग से देखिए। तो पत्रिकाएं जो होती हैं कई बार साप्ताहिक होती हैं, पाक्षिक होती हैं। आपने हमेशा अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी गृहशोभा या वनिता मासिक पत्रिकाएं पढ़ती रहती हैं, और साथ ही साथ ऐसे भी प्रकाशन हैं जो 3-3 महीनों में होते हैं। एक महीने के साथ साथ 3 महीने के जो ये मुद्रण हैं, इन मुद्रणों के माध्यम से उन पूरे कालांतर का वर्णन हम लोग समग्र रूप से एक जगह पे कर पाते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बीच में एक बड़ा विभेद भी है, तो उस विभेद को अगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो हम यह पाते हैं कि साक्षरता मुद्रण की आधारभूत आवश्यकता है। केवल साक्षर व्यक्ति ही इसे पढ़ सकते हैं। मतलब मुद्रित माध्यम की एक जो बड़ी कमी है वो है कि साक्षर होना इसके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु इस प्रकार से तैयार की जाती है कि स्क्रीन पर कई बार पिक्चर के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हम चीज़ों को बता पाते हैं। अब अगर हम लोग मुद्रित माध्यम की बात करें तो यह एक माध्यम ऐसा है जिसको डेडलाइन के मुताबिक कार्य करना पड़ता है, और साथ ही साथ प्रातःकालीन पत्र छपने के पहले ही दिन की मध्यरात्रि तक के समाचारों को हम लोग इसमें समग्र रूप से स्थापित कर लेते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती है, समाचार को किसी भी वक्त अपडेट किया जा सकता है। कई बार हमारी बाध्यता होती है प्यारे शिक्षार्थियों कि हम लोग अपनी स्वाध्यन सामग्री तक ही सीमित रहें, क्योंकि निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षाओं में इसी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो आपका भी यह प्रयास होना चाहिए कि हम इनको बार बार पढ़ें और अपने लिए परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।